ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 3 मार्च 2024 के लिए है। विषय: मसीह यीशु, स्वर्ण पथ, अबरानियों। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। उत्तरदायी अध्ययन: यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रगत हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वास्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। लूका। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावरहित नहीं होता, और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। वो उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वो आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वो निकल जाती है। वो आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया, और शमौन की सास को बुखार चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर बुखार को डांटा और वो उस पर से उतर गया, और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नए नए प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वो सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रख कर उन्हें ठीक किया। और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है बहुतों में से निकल गई, पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानते थे कि ये मसीह है। यूहन्ना। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यूहन्ना। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करेगा। मैं अब से तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। मत्ती। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरानियों ने यीशु के मार डालने की सहमति की। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो सूली पर चढ़ाया जाए। तब उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यूहन्ना। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से हटा हुआ देखा, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो दूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सराहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा, जहां यीशु की लौथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी अर्थात हे गुरु। उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, जब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। लूका। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, तुम इन सब बातों के गवाह हो। तब वो उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वो उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। नासरत के यीशु के आगमन ने मसीही युग की पहली शताब्दी को चिन्हित किया, लेकिन मसीह वर्षों या दिनों की शुरुआत के बिना है। मसीही युग के पहले और बाद में सभी पीढ़ियों के दौरान आध्यात्मिक विचार के रूप में मसीह भगवान का प्रतिबिंब शक्ति और अनुग्रह के कुछ उपाय के साथ आया जो सभी मसीह सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ईश्वरी छवि विचार या मसीही ईश्वरी सिद्धांत ईश्वर से अविभाज्य था, है और हमेशा के लिए रहेगा। यीशु ने अपनी इस आध्यात्मिक पहचान की इस एकता का उल्लेख किया, पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, मैं और पिता एक हैं, पिता मुझसे बड़ा है। बचपन से ही वो अपने पिता के व्यवसाय में शामिल था। उसकी सोच दूसरों से अलग थी। उसका स्वामी आत्मा था, लेकिन उनका स्वामी सामग्री था। उसने परमेश्वर की सेवा की, उन्होंने लालच की सेवा की। उसके स्नेह शुद्ध थे, उनके कामुक थे। उसके स्वस्थ थे, पवित्रता और जीवन के आध्यात्मिक प्रमाण में इंद्रियां डूब जाती हैं। उनकी इंद्रियों ने विपरीत रूप से गवाही दी और पाप, बीमारी और मृत्यु के भावतिक साक्ष्य को आत्मसात कर लिया। उनकी अपूर्णता और अशुद्धियों को उसकी पूर्णता और पवित्रता की सदैव फटकार महसूस होती थी। इसलिए न्यायपूर्ण और पूर्ण यीशु के प्रति दुनिया की नफरत और भविष्य अद्विकता की दूर आदर्शता के कारण उसे स्वागत में त्रुटि मिलेगी। वो पुरुषों में तुच्छ माना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। शांति के आने वाले राजकुमार के विषय में यशाया का ग्राफिक शब्द था। हमारे गुरु ने कोई विचार, सिद्धांत या विश्वास नहीं सिखाया। ये सभी वास्तविक लोगों का दिव्य सिद्धांत था जो उसने सिखाया और अभ्यास किया। मसीही धर्म का उसका प्रमाण धाम और पूजा का कोई रूप या प्रणाली नहीं था, लेकिन क्रिश्चियन साइंस जो जीवन और प्रेम के समान जैसे को दर्शाता है। अपने आप में जीवन और सत्य का चित्रण और प्रदर्शन करते हुए और बीमारों और पापियों पर अपनी शक्ति के द्वारा एक दिव्य छात्र में उन्होंने ईश्वर के मनुष्य के सामने प्रकट किया। यीशु द्वारा किए गए चमत्कारों, अजीब कार्यों और विशेष रूप से उनके शक्तिशाली, मुक्ताधारी, अद्वितीय और विजयी शरीर से बाहर निकालने में शामिल दिव्य सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए मानव सिद्धांत अपर्याप्त हैं। यीशु के शिष्य जो अपने गुरु की विजय को समझने के लिए पूरी तरह से विकसित नहीं थे, उन्होंने कई अद्भुत कार्य नहीं किए जब तक कि उन्होंने उसके सूली पर चढ़ने के बाद नहीं देखा और पता नहीं किया कि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। इससे उन्हें उसके द्वारा सिखाई गई सभी बातों की सत्यता का विश्वास हो गया। अम्माउस की यात्रा में यीशु को उसके दोस्तों ने उन शब्दों से और रोटी तोड़ने से जाना जिससे उनके हृदय जल उठे। दिव्य आत्मा जिसने सदियों पहले यीशु की पहचान की थी, उसने प्रेरित के माध्यम से बात की है और हर युग और समय में इसके माध्यम से बात करेगी। ये ग्रहणशील हृदय पर प्रकट होता है और फिर से बुराई को दूर करता और बीमारों को ठीक करता हुआ दिखाई देता है। यीशु के मिशन ने भविष्यवाणी की पुष्टि की और पुराने समय के तथाकथित चमत्कारों को ईश्वरीय शक्ति के प्राकृतिक प्रदर्शनों के रूप में समझाया जिन्हें समझा नहीं गया था। यीशु के कार्यों ने मसीहा पद पर उसके दावे को स्थापित किया। यीशु स्वयं को अपने शत्रुओं से अलग कर सकता था। उसमें परमात्मा की समानता में अपनी आध्यात्मिक पहचान के लिए जीवन की मानवीय भावना को त्यागने की शक्ति थी, लेकिन उसने मनुष्यों को नश्वर शरीर को नष्ट करने का प्रयास करने की अनुमति दी ताकि वो अमर जीवन का प्रमाण प्रस्तुत कर सके। मनुष्य के इस जीवन को कोई नहीं मार सकता। यीशु अपना लौकिक जीवन अपने शत्रुओं के हाथों में दे सकता था, लेकिन जब उसका पृथ्वी मिशन पूरा हुआ तो उसका आध्यात्मिक जीवन अविनाशी और शाश्वत हमेशा के लिए वही पाया गया। वो जानता था कि पदार्थ में कोई जीवन नहीं है और वास्तविक जीवन ईश्वर है, इसलिए उसे अपने आध्यात्मिक जीवन से तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक ईश्वर को समाप्त नहीं किया जा सकता। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और इसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धा अंजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था। उसने जीवन के काम न केवल स्वयं के प्रति न्याय में बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किया। यीशु ने निर्भीकता के इंद्रियों के मनियाता प्राप्त सबूतों के खिलाफ फारीसासिक पंथों और प्रथाओं के खिलाफ काम किया और उसने अपनी विचार शक्तियों के साथ सभी विरोधियों का खंडन किया। मानव निर्मित सिद्धांत लुप्त हो रहे हैं, मुसीबत के समय में वो मजबूत नहीं हुए हैं। मसीही शक्ति से राहत वो कैसे मसीह के सिद्धांतों या अनुग्रह के चमत्कारों का वर्णन कर सकते हैं? मसीही उपचार की संभावना से इनकार मसीही धर्म को उसी तत्व से लुटाता है जिसने इसे पहली शताब्दी दिव्य शक्ति और इसकी आश्चर्यजनक और अप्रतिम सफलता दी। सच्चा लोगोस प्रदर्शनकारी क्रिश्चियन साइंस है, सिद्भाव का प्राकृतिक नियम जो कला को खत्म करता है। इसलिए नहीं कि यह विज्ञान अप्राकृतिक है, ना ही क्योंकि यह ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है, लेकिन इसलिए कि यह भगवान का अपरिवर्तनीय नियम है और अच्छा है। ये क्रिश्चियन साइंस का सिद्धांत है। उस दिव्य प्रेम को उसकी अभिव्यक्ति या वास्तव से वंचित नहीं किया जा सकता कि आनंद दुख में नहीं बदल सकता, क्योंकि दुख आनंद का स्वामी नहीं है, कि अच्छाई कभी बुराई पैदा नहीं कर सकती, कि पदार्थ कभी भी मन उत्पन्न नहीं कर सकता है, और ना ही जीवन का परिणाम मृत्यु है। पूर्ण पुरुष भगवान द्वारा शासित उसका सिद्ध सिद्धांत पाप रहित और शाश्वत है। अपने स्वयं के पंखों के नीचे बीमारी और पापी लोगों को इकट्ठा करके सत्य का अमर विचार सदियों से चल रहा है। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करेगा, जब वो ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता और उस परम आत्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है। वादे पूरे होंगे, दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है, और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की वेदी पर अपने संसारिक स्तर को रखता है वो अब मसीह के प्याला को पीता है और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। आध्यात्मिक विचार का प्रतिरूपण हमारे मास्टर के संसारिक जीवन में एक संक्षिप्त इतिहास था, परंतु उसके राज्य का अंत ना होगा, क्योंकि मसीह ईश्वर का विचार अंत तक सभी देशों और लोगों पर शासन करेगा, अनिवार्य रूप से बिल्कुल अंत में दिव्य विज्ञान के साथ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।